शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।
श्रोताओं, ये है जब चलें शहर की ओर, खास हमारे प्रवासी श्रोताओं के लिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम। मैं हूँ अंजलि जोशी और मेरे साथ हैं नरेन। मगर नरेन, तुम इतने उदास क्यों हो भाई?
कुछ खास नहीं अंजलि, बस एक जिगरी दोस्त को बिजनेस में बहुत घाटा हो गया और वो दिवालिया हो गया है, बस इसी को लेकर जरा परेशान हूँ।
अब बिजनेस में उतार चढ़ाव तो रहता ही है नरेन। अब जैसे हमारे धारावाहिक शहर की ओर में चंदर भी तो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है।
तो सुने कहानी में आगे क्या चल रहा है।
मधु, गाय भूखी है, तुम जरा जाकर उसे घास डाल दो।
मधु, मधु, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ।
दीदी, आप कुछ काम है?
तेरा ध्यान कहाँ है? क्या बात है, सब ठीक तो है?
हाँ हाँ दीदी, सब ठीक है।
देख मधु, कोई बात तो है जो तुम उससे छुपा रही है, और वैसे भी अगर सब कुछ ठीक है तो मैंने तुझे गाय को घास डालने के लिए बोला था, तूने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? और तू इतनी उदास क्यों है?
कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही, आज माँ की बहुत याद आ रही थी।
देख मधु, तू मुझे अपनी सहेली मानती है ना, तो फिर सच सच बता क्या बात है।
वो दीदी,
तुझे मेरी कसम, सच सच बता क्या बात है, चंदर ने कुछ कहा क्या?
नहीं नहीं दीदी, दरअसल बात ये थी, वो परचून की दुकान खोल रहे हैं।
तो इसमें परेशान होने की क्या बात है?
दीदी, दरअसल वो मेरे जेवर गिरवी रखकर दुकान खोल रहे हैं।
क्या, चंदर तेरे जेवर गिरवी रखकर दुकान खोल रहा है?
मुझे दुकान खोलने की खुशी है दीदी कि वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो जेवर मेरे मायके से मुझे मिले थे, इसलिए थोड़ा दुखी हूँ।
तू दुखी मत हो, चंदर बहुत जिम्मेदार है, वो बहुत जल्द ही तेरे जेवर छुड़ा कर ले आएगा।
हाँ दीदी, अब तो बस मुझे भी यही उम्मीद है।
चाचा, चाचा जी।
अरे उमेश बेटा, आओ आओ।
नमस्ते चाचा जी।
नमस्ते उमेश बेटा, और सुनाओ कैसे हो?
मैं ठीक हूँ चाचा जी। अच्छा चाचा, ये मेरा दोस्त है चंदर।
जी नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते, इसे तो मैं जानता हूँ, रतन का ही लड़का है ना?
जी चाचा जी।
अरे तुम लोग पहले बैठो तो सही।
हाँ
हाँ हाँ। तो उमेश, क्या कर सकता हूँ मैं तेरे लिए?
चाचा जी, मेरे लिए नहीं, आज मैं चंदर के लिए आया हूँ।
हाँ हाँ, तो बताओ क्या कर सकता हूँ मैं चंदर के लिए?
चाचा, दरअसल चंदर एक परचून की दुकान खोलना चाहता है।
ये तो बड़ी अच्छी बात है।
तो चाचा, मैं ये कह रहा था, आपकी जो दुकान सड़क के पास खाली पड़ी है ना, अगर वो चंदर को किराए पर मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा।
अरे बेटा, दुकान तो मैं दे दूंगा, पर वहाँ दुकान करने से क्या फ़ायदा, वहाँ तो पहले से ही दो परचून की दुकानें मौजूद हैं।
अब चाचा जी, मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो काम की शुरुआत करनी ही होगी ना।
और वैसे भी दो हैं तो क्या हुआ, शहर में तो एक लाइन में 10-10 दुकानें होती हैं, फिर भी लोगों को जिस दुकान पर जाना होता है उसी पर जाते हैं। अगर चंदर दो पैसे कम मुनाफे पर सामान देगा तो फिर लोग इसी की दुकान पर आएंगे ना चाचा, क्यों चंदर, मैं सही कह रहा हूँ ना?
हाँ हाँ, और क्या, मैं थोड़ा कम मुनाफा कमा लूँगा तब तो लोग अपने आप ही मेरी दुकान पर आएंगे, और जब दुकान चल जाएगी तो मुनाफा भी धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा।
भाई वो बात तो ठीक है चंदर बेटा, चलो ठीक है, इस महीने की 10 तारीख को दुकान में राशन डाल लेना।
अब चाचा जी, किराया?
किराया जो तुम्हें ठीक लगे वो दे देना।
नहीं, फिर भी अगर किराए की बात अभी से खुलकर हो जाती तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
ठीक है बेटा, वैसे तो 1000 रुपये का रेट चल रहा है, फिर भी तुम उमेश के साथ आए हो तो 800 ही दे देना।
ओह धन्यवाद चाचा जी।
अरे बेटा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, अब तुम्हारे साथ आया है तो मना थोड़ा ही ना कर पाऊँगा।
अच्छा चाचा जी, अब हम चलते हैं, चंदर जल्दी ही अच्छा सा दिन देख कर दुकान में सामान डाल देगा।
ठीक है बेटा।
नमस्ते चाचा।
नमस्ते
नमस्ते, नमस्ते।
ले भाई, तेरा ये काम भी हो गया।
धन्यवाद यार उमेश।
कविता भी 11 बजे आने के लिए बोला था और अभी तक नहीं आई।
माया, माया, शुक्र है कि पहुंच गए।
और 5 मिनट नहीं आती तो मेरी ट्रेन निकल जाती।
अरे क्या बताऊं माया, इतना ट्रैफिक था कि बस जाम में फंस कर रह गई।
अच्छा चल, ला आप सामान दे दे जल्दी से।
अरे हाँ, ये ले, इसमें छोटू और सुषमा के लिए कुछ कपड़े हैं और ये कुछ पैसे हैं, इन्हें तू माँ को दे देना।
ला, इन्हें इस बैग में रख देती हूँ।
ठीक है माया, वो ले तो लेंगे ना इन सब चीजों को।
उसकी तू बिल्कुल फिक्र मत कर, वो सब कुछ तू मुझ पर छोड़ दे।
ओ माया।
अच्छा मैं चलूं, गाड़ी छूटने का वक्त हो गया है।
अरे हाँ ठीक है, तू अपना ख्याल रखना। अच्छा सुन माया,
अब क्या रह गया
माया? ये चिट्ठी।
चिट्ठी?
हाँ, अगर हो सके तो इसे माँ को दे देना।
ठीक है मैं दे दूंगी, अब मैं चलूं?
हाँ हाँ तू चल।
चल तू अपना ख्याल रखना।
ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना।
मधु, मैं दुकान का सामान लेने ऋषिकेश जा रहा हूँ।
जी अच्छा।
अच्छा सुनो, जरा वो बड़े वाले थैले निकाल देना। अब ये 1 नोट 1000 का, इसे अलग रख देता हूँ किराए के लिए।
ये लीजिए।
हाँ मधु, मैं घर का नहीं दुकान का सामान लेने जा रहा हूँ, इस छोटे से थैले में कैसे आएगा इतना सारा सामान।
ओह मैं भी लेकर आती हूँ।
मधु जल्दी लाओ, देर हो रही है।
लाई बाबा, ये लीजिए।
हाँ अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है।
अरे ये चंदर कहाँ जा रहा है?
दुकान का सामान लेने।
ओह तो आखिर देव जी ने दुकान शुरू कर ही दी। चलो अच्छा है, अब 13 दिन आराम से कटेंगे, सेठानी बन जाएगी कुछ दिनों में।
अरे बैठो बैठो बैठो, ऋषिकेश ऋषिकेश ऋषिकेश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
भैया ऋषिकेश।
हाँ जी बैठो बैठो। अरे भाई थोड़ा अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, एडजस्ट करो इन्हें।
अरे भाई कितनी देर लगेगी, जल्दी करो।
अरे बस चल रहे हैं भाई।
भैया भर तो गई है, अब क्या छत पर बिठाओगे?
अरे बस साहब जी, 1-2 सवारी और मिल जाए तो अब भी चल देते हैं।
भाई पहाड़ी रास्ता है, अगर जरा भी इधर उधर हो गया ना तो सबका राम नाम सत्य हो जाएगा।
अरे साहब जी ऐसा कैसे हो जाएगा, पिछले कई सालों से इन्हीं रस्तों पे जीप दौड़ाता आ रहा हूं।
चलो भैया चला ही तो।
माँ कहाँ रह गए मीरा? जल्दी आओ, कहाँ रह गए सब?
क्या हुआ, आप ऐसे क्यों करा रहे हैं?
मीरा मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है।
हे भगवान, फिर वही पेट दर्द, बहुत जोर से दर्द हो रहा है क्या?
हाँ भाई, तू माँ को बुला ला, वही दवा दे देगी।
मैं भी बुलाती हूँ।
माँ जी, माँ जी।
क्या हुआ बारी, तू इतना परेशान क्यों हो रही है?
माँ जी उनके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है।
पेट दर्द? तंग आ गई हूँ मैं इसके पेट दर्द से, काम धाम तो कुछ करता नहीं, रोज एक नया नाटक।
माँ जी वो किसी दवा के लिए बोल रहे थे, वो दे दीजिए।
अच्छा तू चल, मैं अभी लाती हूँ। इस बुढ़ापे में सेवा मेरी होनी चाहिए तो मुझे इनकी सेवा करनी पड़ रही है। तू एक काम कर, ये ले चूरन, एक फंकी पानी के साथ दे दे।
जी माँ जी, ये लीजिए चूरन, ले लीजिए।
बस अभी से आराम करने दे, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा।
माँ जी ये बार बार पेट का दर्द, कहीं ये ज्यादा पीने की वजह से तो नहीं हो रहा? अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर से जांच करवा लूँ।
अरे नहीं बुआरी, तू बेकार की चिंता कर रही है, डॉक्टर के पास जाएगी तो वो 2 बीमारियां और बता देगा, ऊपर से 200-400 रुपए भी बना लेगा। मैंने अभी चूरन दे दिया है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा।
अब कैसा लग रहा है आपको?
दर्द है अभी, थोड़ा सा कम है।
शुक्र है, आपको आराम तो आया? मैं तो घबरा ही गई थी।
तू कुछ ज्यादा ही जल्दी घबरा जाती है।
अच्छा सुनो, अपना चंदर दुकान शुरू कर रहा है।
कैसी दुकान?
परचून की।
तुझे क्या लगता है वो दुकान चला पाएगा?
क्यों नहीं कर पाएगा, वैसे भी वो अभी दुकान का ही तो सामान लेने गया है। अब तो वो दुकान करेगा, घर में पैसे आने लगेंगे। मैं तो कहती हूँ आप भी कोई ऐसा अच्छा काम क्यों नहीं शुरू कर लेते।
तुझे क्या लगता है दुकान करना आसान है? अरे 4 दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा उसे, मुझे तो मालूम है ना।
तो फिर आप शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं कर लेते?
अब तू फिर शुरू हो गई। अपना ये ज्ञान और उपदेश अपने पास रख, समझी? और मुझे जो ये तू शहर जाने के लिए बार बार कहती है ना, ये सही नहीं है। तुझे क्या लगता है शहर में काम करना आसान है? मुझे मालूम है शहरों की हालत, शहरों में आदमी नहीं कसाई बसते हैं, काम ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और पैसा देना ही नहीं चाहते।
आखिर आप शहर जाने के नाम से इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? पहले भी तो आप ऋषिकेश में काम कर चुके हैं, फिर अब आपको शहर जाने से क्या परेशानी है?
अब तू भाषण मत दे और जा अपना काम कर।
वैसे भी मेरी इस घर में सुनता ही कौन है।
तो देखा दोस्तों, चंदर अपनी दुकान को लेकर कितना उत्साहित है।
हाँ भाई, दुकान शुरू करने के लिए पैसे का भी इंतजाम हो गया, दुकान के लिए जगह भी मिल गई। पर नरेन, क्या चंदर अपने इस बिजनेस में कामयाब हो पाएगा?
अंजलि, ये बात तो तुम्हें और हमारे श्रोताओं को आगे पता चलेगी, लेकिन फिलहाल हम अपने श्रोताओं की राय जानते हैं कि उनकी नजर में अपना कोई काम शुरू करना सही है या नहीं।
खुद का व्यवसाय करने में यदि कारोबार ठीक चल रहा है तो यह है कि भाई संतुष्टि है, जितना भी हो अपना काम तो अपना काम होता है। लेकिन ऐसा है, काम करते समय जैसे कभी जैसा परचून की दुकान है ये वगैरह, तो उधार ग्रामीण क्षेत्र में उधार वगैरह फंस जाता है लोगों का, नहीं तो कामयाबी नहीं मिल पाती। सही, जान पहचान के लोग होते हैं कि उसको बाधित कर सकते हैं, तो ये चीज़ जो है आड़े आ जाती है।
मेरा अपना खुद का व्यवसाय है जिसे हम अपना और बच्चों का भविष्य बनाना चाहती हूँ। अपने आप काम करने से तो ये होता है कि जब मर्जी आए तब काम करे, जब मर्जी ना आए तो तब नहीं कर सकता है आदमी। दूसरे की मजबूरी में ऐसा ही होता है, जरूर टाइम टू टाइम जाना पड़ता है।
बिजनेस हो या सर्विस हो, चाहे कृषक हो, किसी भी आदमी को अपना खुद का मेहनत करनी चाहिए। सर्विस में तो आदमी बना रहता है, लेकिन बिजनेस में आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, तो हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है। किसी बिजनेसमैन या कोई कृषक है, मेहनत का फल तो मीठा ही होता है।
अपना खुद का व्यवसाय करने में बहुत बड़ा फायदा यह है कि धन प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है, और अपने व्यवसाय में समय का पाबंद भी नहीं रहता है, जब मन में आए काम किया जाए। लेकिन दूसरे के व्यवसाय में यह है कि हर समय किसी भी टाइम हाजिर होना पड़ता है।
फायदा तो है ही, यानी किसी के दबाव में आदमी नहीं रहता है। और जब अपने आप खुद व्यवसाय होता होगा तो क्यों ना आदमी फायदे में रहेगा। नहीं, मेरी मर्जी है कि मैं एक भैंस रखती हूँ, मैंने अपने व्यवसाय को रखा है, मेरे जेब में पैसे हैं तो मैं भैंस भी रख सकती हूँ। मेरी मर्जी है कि मेरे पास अगर व्यवसाय करने में थोड़ा बहुत पैसे हो गए हैं तो मैं अपने लैट्रिन बाथरूम बना सकती हूँ। दूसरे की दबा डाली में तो ये कैसे हो सकता है दब नहीं।
तो दोस्तों, सभी को लगता है कि अपने बिजनेस में फायदे बहुत हैं, कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता है और एक आजादी है जो नौकरी में नहीं मिलती।
और जहाँ तक जोखिम की बात है तो वो तो हर नए उद्योग में उठाना ही पड़ता है। अरे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब जितना ज्यादा जोखिम होगा फायदा भी तो उतना ही ज्यादा होता है ना।
बिल्कुल नरेन। दोस्तों, आज हम आपको सुनवाएंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो एक सफल व्यवसाय शुरू कर पाए।
तो आइए सुनते हैं हमारे सेगमेंट कुछ विश्वास में एक सफलता भरी कहानी।
मैं गजवा लाल, ग्राम पिल्लू से और अगस्तुनी क्षेत्र, जिला रुद्रप्रयाग। मैं तो बस यही अपना धंधा है कि वेल्डिंग वर्कशॉप का, और 1994 से ये काम को करते आ रहा हूँ और भगवान की तरफ से चल भी रहा है। देखो, तो शिक्षा तो मेरी वैसी कुछ नहीं है, मैंने वही 1994 में हाई स्कूल फेल हुआ था मैं, और इसके बाद मैंने डायरेक्ट काम पकड़ लिया। एक चीज़ में आदमी लगन से अगर इज्जत से उसको करे तो भगवान उसको कर देता पार, और जगह जगह आदमी अगर दिमाग डाले तो आदमी कोई सक्सेसफुल होने के कुछ चांस कम रहते हैं। इसमें तो बस यही मशीन वगैरह चाहिए, औजार चाहिए, और सबसे पहले हमको बिजली के कनेक्शन की मदद, बिजली से की मदद मांगनी पड़ती है। उसके बाद अपनी मशीन वसीन ले आए, और उसके बाद फिर सामान सुमन यही एंगल पत्ती वगैरह जो भी इस लाइक काम होता है, और अपना फिर उसी से काम स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट में आजकल समस्या ये है कि काम कम और दुकानें ज़्यादा, और इसमें कंपटीशन बाद में पिट जाता है। और ये जगह मैंने चुनी है तो इसमें इलाके लगभग ठीक ही हैं, तो इसलिए मैं जगह मैंने इसीलिए चुनी यहाँ पे कि यहाँ और दुकानें कहीं नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया भी है। मैंने पैसा लिया है लोगों से इधर ही के, मतलब अब थोड़ा बहुत पिताजी के भी थे, तो वही हमने अपना जो है कि 30-40 हज़ार भी निकाल कर अपना काम स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। फिर इसमें क्या हुआ कि जैसे ग्राहक आए, ग्राहक ने काम दिया, काम के साथ साथ पैसे भी दिया, पैसे उस पैसे हमने माल लिया है, उस हिसाब से हमारा रोटेशन ठीक चल रहा लगभग क्या है। पूंजी तो अगर आदमी अगर 2-4 लाख रुपए भी लगाए तो वो भी कम ही है, और चलने में 50 हज़ार भी पूरी हो जाते हैं। इसके लिए समस्या यही है कि अगर जानकारी है तब, अगर जानकारी नहीं है तो 50 भी पूरी नहीं है। वो तो बोल रहा हूँ कि 4-5 लाख रुपये भी आदमी लगाए मगर जानकारी की वो भी कम ही है, और जानकारी है आदमी तो 50-60 हज़ार रुपये में आदमी अपना आराम से काम स्टार्ट कर देते हैं। काम सफाई से, टाइम से, मजबूती से और ईमानदारी से लोगों को काम देना होगा। आदमी अगर घूमें देखें, इलाके बतेरे पड़े हुए हैं, कई जगह हैं ऐसी कि जहाँ आदमी अपना व्यवसाय कर सकता है, पर यह है कि सबसे पहले किसी भी काम को करना है तो उसके लिए जानकारी होना सबसे पहले है। बाकी अगर जानकारी की तो आदमी चाहे कहीं भी भटकेगा, उसमें जो है कि आदमी को नुकसान नहीं है।
तो दोस्तों ये था हमारा सेगमेंट कुछ विश्वास। अच्छा नरेन एक बात पूछूं?
हाँ पूछो।
ये जो बिजनेस करने की योग्यता है ना, ये लोगों में जन्म से ही होती है या फिर इस प्रतिभा को तराशा जा सकता है?
पहले तुम ही बताओ कि कोई तुमसे बिजनेस करने को कहे तो तुम क्या कहोगी?
मैं और बिजनेस? नरेन तुम मजाक अच्छा कर लेते हो।
क्यों भाई, क्या तुम बिजनेस नहीं कर सकती?
नहीं भाई, बिजनेस मेरे बस की बात तो बिल्कुल नहीं है।
अच्छा बहाना, तो आइए दोस्तों पूछते हैं भैजी से कि बिजनेस से बचने का अंजलि का ये बहाना किस हद तक सही है।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार नरेन। नमस्कार अंजलि।
नमस्कार भैजी,
कैसे हैं आप दोनों?
हम बिल्कुल ठीक है भैजी। अच्छा भैजी, आज हम आपसे एक बात पूछें।
हाँ हाँ पूछो।
भैजी अंजलि ने कहा कि बिजनेस उसके बस की बात नहीं है। भैजी क्या इंसान में बिजनेस की प्रतिभा शुरू से ही होती है?
क्या बात पूछा है, अरे भाई कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो?
भैजी मैं तो अंजलि से कह रहा था कि कोई बिजनेस शुरू कर ले, लेकिन उसे तो बिजनेस की ABCD भी नहीं मालूम।
नहीं भैजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज बताइए ना इस बारे में।
भाई अंजलि, इस बारे में मैं आज अपनी पोटली से नहीं बल्कि अपना अनुभव बताऊंगा, व्यक्तिगत अनुभव।
तो क्या भैजी आपने भी बिजनेस किया है? मतलब?
मतलब ये कि इसके बारे में मेरा खट्टा मीठा अनुभव है।
तो भैजी आप उस अनुभव को हमारे साथ बांटिए ना।
बताता हूँ। दरअसल बहुत साल पहले की बात है, मैंने पहले दूध का बिजनेस शुरू किया था।
दूध का?
मैं एक ग्रामीण परिवार में पला बड़ा हूँ।
अच्छा,
ये तो आप लोग जानते हो ना।
जी जी।
हाँ, तो उसके बारे में यानी कि दूध के बारे में मुझे पूरी जानकारी थी कि दूध का बिजनेस कैसे किया जाता है। सुबह शाम घर में ग्वाले आते थे, दूध धोते थे और भरकर शहर में बेच आते थे, और इससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती थी।
तो ये तो आपका अनुभव मीठा ही रहा ना, इसमें खट्टा क्या है?
ओफो, थोड़ा धैर्य रखो।
अच्छा जी।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरा मन शहर की ओर भागने लगा। मैं शहर को देखना चाहता था, उसे जानना चाहता था, शहर में लोग कैसे काम करते हैं वो जिंदगी मैं भी जीना चाहता था।
तो फिर क्या हुआ भैजी?
कुछ समय बाद मैं अपना गांव का बिजनेस घर वालों के भरोसे छोड़कर शहर आ गया। शहर में आके मुझे लगा कि मुझे यहाँ कोई नया काम करना चाहिए।
तो आपने शहर में आकर क्या काम किया भैजी?
मैं दूध के काम से तो पहले से ही वाकिफ था, तो मैंने सोचा क्यों न यहाँ पर भी दूध का काम शुरू किया जाए।
बहुत अच्छा।
लेकिन बड़े शहरों में तो वो क्या पैकेट बंद दूध मिलता है?
जी जी।
हैं? तो मैंने वही काम शुरू किया और पैकेट बंद दूध की दुकान शुरू कर दी।
तो भैजी आपका काम चला क्या?
सच बताऊं?
जी
बताइए।
भाई शुरू में तो बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं थी ना। शहर में और गांव में दूध बेचने में बड़ा अंतर है।
तो आपको नुकसान हो गया?
शुरुआत में थोड़ा सा, लेकिन समय रहते मेरी समझ में ये बात आ गई कि मुझे इस काम की सारी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, और मैंने ऐसा किया भी।
फिर
क्या, उन जानकारियों के आधार पर मैं आगे बढ़ता गया और मैंने अपने उस बिजनेस को भी अच्छी तरह से संभाल लिया। जिस काम में मुझे पहले नुकसान होने लगा था, वही अब मेरे लिए फायदे का सौदा बन गया।
मतलब आपने शहर में आकर वहाँ के ढंग से बिजनेस करना सीख लिया।
बिल्कुल ठीक। अब देखो अंजलि, जहाँ तक जन्मजात प्रतिभा की बात है, तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कुछ लोगों में ऐसा हो
जी,
लेकिन अधिकतर आप किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं या नहीं, ये निर्भर करता है जानकारी पर।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि कोई भी बिजनेस कर सकता है, जरूरत है तो उससे संबंधित जानकारी हासिल करने की। भैजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें और हमारे श्रोताओं को इतनी बढ़िया जानकारी दी, और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता आपके इस अनुभव का जरूर लाभ उठाएंगे।
धन्यवाद। धन्यवाद नरेन, धन्यवाद अंजलि।
तो दोस्तों, भैजी से भी बात हो गई, अब समय है हमारे सेगमेंट काम की बात का, जिसमें हम आपको माइक्रो क्रेडिट यानी कि सूक्ष्म ऋण के बारे में बताएंगे।
दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि आप अपना काम शुरू करने के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं, और साथ ही सरकार की स्वरोजगार संबंधी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं।
और माइक्रो क्रेडिट भी बहुत कुछ इसी से मिलता जुलता है। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो बैंकों की औपचारिकताओं के कारण ऋण सेवा का लाभ नहीं उठा पाते। आज बहुत से सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और संस्थाएं हैं जो इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्व सहायता समूह भी माइक्रो क्रेडिट का बढ़िया साधन है।
इसमें 5 से 20 लोग तक मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप के किसी भी सदस्य को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये ग्रुप इस व्यक्ति की मदद करता है और उसे पैसे उधार देता है, ताकि वो व्यक्ति अपने काम को आसानी से पूरा कर सके।
यही नहीं, आज तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसे समूह की मदद कर रही हैं।
दोस्तों, अगर आप भी माइक्रो क्रेडिट प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए। मगर हाँ, ये याद रहे कि आपको उस बैंक या संस्था की कागजी कार्यवाही जरूर पूरी करनी होगी जिससे आपको ऋण मिल रहा है।
ज्यादातर बैंक संस्थाओं को ही वित्तीय सहायता देते हैं, और ये संस्थाएं फिर स्व सहायता समूहों को मदद मुहैया कराती हैं। लेकिन नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा बैंक है जो सीधे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद करता है और उन्हें ऋण की सुविधा देता है। इसके अलावा आप अपने निकटतम ग्रामीण और सहकारी बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं।
और नरेन, नाबार्ड की ब्याज दर है ना, और बैंकों की तुलना में कम है।
अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ऋण लेने से पहले साइन किए जाने वाले कागजों और शर्तों की आपके पास पूरी जानकारी हो। साथ ही आपको इसके लिए अपना एक मान्य पहचान पत्र भी देना होगा।
अगर आप अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहते हैं और दिल्ली में रहते हैं, तो आप इस सुविधा के लिए दीपालया कॉर्पोरेट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।
वहाँ का पता है 46 इंस्टीट्यूशनल एरिया, डी ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058, और वहाँ का फोन नंबर है 0112852037 यानी 0112852037। इसके अलावा आप 28522263 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
और आप दिल्ली में ही एक अन्य संस्था भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि नवयुवकों और महिलाओं को सही उद्योग का चुनाव करने में मदद करती है। साथ ही उसके लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है।
और भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट के बारे में और जानकारी के लिए आप उन्हें दिल्ली में 0112469 3079 पर संपर्क कर सकते हैं।
जो लोग मुंबई में रहते हैं वो इनके पुणे ऑफिस में 0202553631 यानी 0202553261 पर फोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी
और आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे।
अगर आप इस संबंध में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें अपना सवाल 9197176782 यानी कि 9197176782 पर अपना SMS कर सकते हैं।
इसके अलावा आप हमें अपने सवाल पत्रों के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे। और अब आज की चिट्ठी जो हमें लिख भेजी है, नरेंद्र सिंह रावत जी ने इंदिरा नगर ठाणे मुंबई से ये चिट्ठी इन्होंने अपने माता पिता के नाम लिखी है जो ग्राम आर्स पोस्ट ऑफिस सोंप जिला टिहरी गढ़वाल में रहते हैं। ये लिखते हैं कि पूजनीय माताजी और पिताजी, मैं आपका बेटा नरेंद्र सिंह दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सर्व परिवार राजी खुशी रहें। पत्र लिखने का खास कारण ये है कि मैंने आपको इतने पत्र भेजे मगर आप लोगों ने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। अगर आप मुझसे इतने नाराज हैं तो बस एक पत्र भेज दीजिए, मैं सोचूंगा कि आपने हजार पत्र भेजे। खुशी से दिल को आबाद रखिए। मैं आपसे इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि मुझे दिन में एक बार याद करना और माताजी व पिताजी मेरे लिए किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। आपका बेटा नरेंद्र सिंह की लिखी चिट्ठी को सुनकर अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। नरेंद्र सिंह रावत जी की ये चिट्ठी पढ़कर दिल भर आया। अपने सभी सुनने वालों को हम ये बताना चाहेंगे कि यूं तो हमारा ये सेगमेंट आपकी चिट्ठी प्रवास से जुड़े हुए अनुभवों के बारे में ही होता है, संदेशों के लिए नहीं, लेकिन नरेंद्र सिंह जी की ये चिट्ठी दिल को छू लेने वाली है, इसीलिए हमने इसे अपने इस सेगमेंट में शामिल किया। उम्मीद है कि उनकी ये चिट्ठी अगर उनके माता पिता ने सुनी होगी तो जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे। ये तो थी आज की चिट्ठी, लेकिन अभी कुछ संदेश बाकी हैं जो हमारे प्रवासी दोस्तों ने अपने परिवार वालों के लिए भेजे हैं।
तो आइए सुनते हैं आज के संदेश।
मेरा नाम रोहित जगमोहन ढोंडियाल, मैं बम्बे में रहंदू, वाड़ा लमा। हमारे गांव का नाम है घुन्ना। मेरे माता जी का नाम है श्रीमती मीना ढोंडियाल। माँ, मैं सब ठीक छो ही खो, नैना सब ठीक छी ना, फिकर नहीं कर मेरी, और तक पुण्य ख्याल रखी, दादा दादा ख्याल ख्याल रखी, तबियत पानी ध्यान देऊँ क्या, अब ठीक छो ही का, फिकर नहीं कर मेरी।
मैं नाम दलबीर जी, पोस्ट ऑफिस स्टूडेंट ऑफ बरदान, जिला रुद्र गढ़वाल, और मैं घर दसन दे सदेण हूँ, मैं नौकर कनोजो राजी खुशी जी, और मैं दिवा के बाद घर ओलू, और मेरे चिंता ना करें ना, पिताजी तभी नमस्ते बोल दिया ना, और मेरे बोली तभी मेरे चिंता ना करें।
मैं थाना में रहा, मेरा नाम उसे नरेंद्र ममगाई, गाँव का नाम ब्योली, मैली ब्योली, घोड़ी पोस्ट ऑफिस घोड़ी खाल और पैडल शो, और मैं अपने सासू को रह बार देना चाहूँ कि हम एक सब ठीक ठाक छा, तुम तक कुशल मंगल रहे, और अपने तबियत तो ध्यान दिया, हम एक सब राजी खुशी से छा।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये संदेश सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा,
और उन लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगा होगा जिनके लिए ये संदेश भेजे गए हैं।
अगर आप भी हमें अपना कोई संदेश हमारे प्रोग्राम के जरिए अपने परिवार तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें 9197176782 23 यानी 9197176782 23 पर अपना नाम और पता हमें SMS कर सकते हैं। हम आपके उन संदेशों को रिकॉर्ड करके अपने कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर में शामिल करेंगे और आपके परिवार तक पहुंचाएंगे।
हमारा पता है, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
कार्यक्रम में सहयोग के लिए हम अपने सहयोगियों मंदाकिनी की आवाज, हेवलवाणी और दिल्ली और मुंबई के अपने सामुदायिक संवाददाताओं के आभारी हैं।
और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, आपसे विदा लेने का।
पत्रों के जरिए भेजते रहिए हमें अपना प्यार। हम फिर हाजिर होंगे अगली बार,
तब तक के लिए नमस्कार।
जब चले शहर की ओर, जब चले शहर की